siap datang. Wahi Satyam Paramadhi Mahi, Krishna jo Tri Satya hai aur wahi Parabrahma hai, wahi निगूढ़ ब्रह्म है, गूढ़ ब्रह्म, गूढ़म ब्रह्म,
गूढ़म ब्रह्म,
और अहोभाग्यम अहोभाग्यम जगत नंद गोप रजोगुशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन इत्यादि भी बताया। तो उसी को करें सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य स्वरूप पर ब्रह्म का मैं, वो कैसे हैं जन्मादस्य जगत, ये दूसरे अर्थ में ले सकते कृष्ण के अर्थ में, जिन्हें से आद्य जन्मा,
जिन्होंने जन्म आदि से लेकर के समस्त
आद्य
जन्म आदि से लेकर के सभी लीलाओं को प्रकट किए,
वो जीव गोस्वामी जैसा है
कृष्ण,
वो जीव गोस्वामी जन्म गोकुल में, मथुरा में या गोकुल में जन्म से लेकर के जितनी लीलाओं को प्रकट, ये जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी का जब बतलाएंगे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिन जन्मादस्य जत आद्य श्रृंगार रस, सबसे पहला शांत रस है या मधु रस है, कौन रस
आदि रस
कौन रस है पहला, पहले तो आदमी कखा कबर से अ आ से पढ़ता है ना, किंतु इस जगत का नियम है हम कफा कफा नीचे से चलते, किंतु उस जगत का नियम क्या है, वो ऊपर से उतरता है, उसका मूल है ऊपर और नीचे उसकी शाखाएं और फल फूल पत्ते डाल उसका है
संसार आदि।
तो वहाँ पर जितने रस हैं इस जगत में, जब रस की शिक्षा करेंगे तो पहले शांत से हम चलेंगे, शांत और किंतु जब विचार करेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से तो आद्य रस माने पहला रस ही है श्रृंगार रस, उसी से ही समस्त जितने भी रस होते हैं उसे प्रकाशित, उसी के अंदर में सब है अंशित, जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं तो जितने पहले के उनके अवतार हैं, अंश हैं, कला हैं, तद्रूप वैभव हैं और भविष्यत में भी जितने अवतीर्ण होंगे वो सब कृष्ण के साथ में उनके अंतर में प्रकट होते, सबको थोड़ी भूख होकर के रहते हैं, ऐसे श्रृंगार रस में ही ये सब रस हैं, इसलिए आदर्श कहा गया। तो जिनसे श्रृंगार रस होता है प्रकटित होता है वो कैसे होता है, अन्वयादि इतरतश्च, अन्वय माने संयोग के द्वारा, कृष्ण का पहला राग होता है पूर्व राग से उनको देखने से आरंभ करके मिलन तक, ये सब जितने उनके भाव हैं ये एक रूप से संयोग है, और दूसरा होता है मिलने के बाद में जब विरह होता है तो विरह, यही दोनों प्रकार के प्रेम हैं। इन्हीं प्रेमों की मूर्तियां कौन है, गोपियां, तो इसको ये बतला रहे हैं जत, जिनके द्वारा कृष्ण ही यदि नहीं होते तो ये आदर्श कभी भी संभव नहीं, इसलिए इसके मूल ये कृष्ण है। कौन कृष्ण है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही, ये उस स्वयं वो है। अर्थेशु, यहां अर्थेशु माने जो श्रृंगार रस की जो 64 प्रकार की कलाएं हैं उन सब कलाओं में ये अत्यंत अभिज्ञ हैं, भक्ति से आरंभ करके जितनी 64 प्रकार की कलाएं हैं, इसका अतिरिक्त नृत्य गीत वाद्य किसी को मनाना इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं समस्त कलाओं में कृष्ण ही अभिज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त हमें बल्कि उन्होंने दिया है हर्क मुनि के हृदय में कुछ थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए थोड़ा सा वर्णन किया, किंतु उनका वर्णन अमांग मन सौ गुरुचरण प्राकृतिक पूर्ण रूप से नहीं हो सका, जिस रस में ये अभिज्ञ है कोई भी दूसरा अभिज्ञ नहीं। इसलिए अर्थेशु, अर्थेशु माने वो सब जो प्रेम की जो कलाएं हैं उन सब में ये अभिज्ञ है। स्वरा उनको किसी से सीखना नहीं है, वो स्वप्रकाश वस्तु है। तेने ब्रह्म हृदय आद कवे मुनि अंत जत सूरया, जिस विषय में बड़े बड़े मुक्त महापुरुष लोग भी, ब्रह्मा शंकर और दूसरे दूसरे लोग, जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्मुख आलक्षितो अनुसार सा पुरुष, ये सभी मोहित हो जाते हैं उसको, अर्थात तेने ब्रह्म रस ब्रह्म हृदय भक्त हृदय सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, ये उन्होंने प्रकाश किए। ब्रह्मा के लिए तो होगा शब्द ब्रह्म वेद, उनको हृदय में प्रकाशित, किंतु सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के हृदय में या व्यास और नारद के हृदय में उन्होंने तेने रस ब्रह्म उनके हृदय में प्रकाशित। आद कवे मुह्यंति जत सूरी लो आदि कवि तक भी, आदि को मैंने भक्त इत्यादि भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, और नहीं तो आदि कवि यदि इधर में लाएंगे तो आदि कवि ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव गोस्वामी, इनके हृदय में रस ब्रह्म की उत्पत्ति ने प्रकट किया, जिसे कि श्रीमद् भागवत जैसा रस ग्रंथ उन लोगों ने जगत में प्रकाश किया, नहीं तो ये कभी नहीं हुआ। कहें क्यों, वो दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का
निगम
फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसम आलयम, ये श्रीमद् भागवत ही रस का आलय, ये यदि नहीं प्रकाश करते तो नहीं हो सकता था। मोजंत जत सूर्या, जिसमें ये सब जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महर्षि और ब्रह्मा इत्यादि हैं, शंकर जी हैं, ये सब लोग जिसमें मोहित हो जाते हैं उसको उन्होंने तेज उबारी मृदान, जिस कृष्ण के वृंदावन में बिहार में जो लीला हुई उन लीलाओं को दर्शन करके, उस रस को दर्शन करके, जिन्होंने बंसी के द्वारा जिस रस को उन्होंने वर्षा की, उस रस से हुआ क्या, तेजो बारी मृदान जब प्रतिमय, जिससे ये चंद्र जो हैं वो क्या हो गए, मिट्टी के समान बन गए, कहां चंद्र सरोवर पर वो चलना भूल गए, और जो तेज हैं वो मलिन हो गए, उस रस में कृष्ण के सौंदर्य देख करके वह एकदम मलिन बन गए, और तेजो पानी जमुना का जल जो था वो मट्टी बन गया, पत्थर जैसा कठोर बन गया, और मृदंग पहाड़ गिरिराज और चरण पहाड़ी
पिघल गए,
और भूमि सब पिघल गई, जिनके बंसी की ध्वनि से, जिनके रूप को सौंदर्य को देख करके और बंसी का यह रस वर्षा से सब उलट पुलट हो गया, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ सा हो गया। का स्त्री थे कल्पदायक वेद गीत सम्मोहिता अर्चरिता न चले त्रैल त्रैलोक्यम जगो दुर्गाखंड विक्रम, तो कहने हैं तेजो बार मिला, जिसके साधारण रूप में दर्शन से, जिसके रूप के माधुर्य से, बंसी के निनाद से विनिमय एक दूसरे जैसे, अर्थात जड़ चेतन जैसा, चेतन जड़ जैसा, तेज साधारण जैसा दिखाई पड़े, मलिन और बारी जमुना पर्वत इत्यादि जैसे कठोर बन गई, और मृदंग मृदंग माने मिट्टी का जो ये रूपांतर, जो पत्थर इत्यादि वो सब पिघल करके पानी बन गए। जथा विनिमय जत्र से स्वर्गो अमृषा, जहां पर कि तीन स्वर्ग, तीन स्वर्ग क्या, गोकुल, मथुरा और द्वारका, मथुरा और ये तीन स्वर्ग अमृषा ये नित्य परम सत्य हैं, और लादिनी संबित और संदिनी ये तीनों जो शक्तियां हैं, ये तीन जो स्वर्ग हैं और इनके जो प्रकाश हैं सब समय नित्य हैं और सर्वत्र ये व्याप्त हैं, ये स्वर्ग। और कृष्ण की त्रिविध लीलाएं हैं, कैसी लीलाएं,
बाल मंडप,
ये तीन प्रकार की जो लीलाएं हैं, ये त्रिसर्ग जो हैं सब समय नित्य सत्य हैं, उन सब के साथ में अपनी शक्तियों के साथ में धामना स्वयं अपने धाम में अपनी शक्तियों के साथ में नित्य जो विराजमान हैं, निरस्त कहो कम, वहाँ पर माया का कोई भी कुछ नहीं है, सत्यम परम धीमही, उस सत्य स्वरूप परम सत्य स्वरूप जो कृष्ण हैं उनका मैं वो हमारे ध्यान में। अब तीसरा, केवल कृष्ण से नहीं रस होगा, नहीं हो सकता, शक्ति प्रधान रहेगी, राधा कृष्ण सीता राम इत्यादि जितने भी हैं ये शक्ति की प्रधानता के, ये जो कुछ जगत में दिखता है शक्ति की ही वैचित्रता दिख पड़ती है, शक्तिमान नहीं दिख पड़ता, उसका स्वरूप लक्षण है केवल इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, और जो कुछ देखते हैं शक्ति की ही ये विचित्रता है। तो यहाँ पर कहते हैं जन्मादर्श जता सत्यम परम धीमही, सत्य स्वरूप भगवान की लादिनी शक्ति रूपी महाभाव रूपा जो राधा जी और उनके साथ में रसराज जो कृष्ण हैं, उन दोनों का मैं ध्यान करता हूँ, जो अपने धाम में सब समय लीला विलास में रहते हैं अपनी शक्तियों और अर्थात अपनी सखियों इत्यादि गोपियों के सहित, उनका मैं ध्यान करता हूँ दोनों का, जिससे जन्म आदि श्रृंगार रस का जिससे जन्म होता है, अन्वय और व्यतिरेक रूप में होता है। कैसे अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप में, संयोग के रूप में, राधा जी के साथ में कृष्ण का साथ यदि संयोग होगा तो ये महाभाव रूढ़ अधिरूढ़
मोदन
तक में मोदन
मदन मादन
मादन
मोहन
दिव्य दिव्योन्माद प्रेम वैचित्र यहाँ तक पहुंच जाएगा, जो कहीं नहीं प्रकाश में। और वियोग में, वियोग में चित्र जल्प इत्यादि तक मोहन के रूप में यह पहुंचता है, यह दोनों न रहे तो रस परिपूर्ण नहीं होगा, इसलिए मिलन और वियोग दोनों से ये मिल करके ये कृष्ण का यह जो रस है आद्य रस ये प्रकाशित है। इनमें ये कृष्ण और राधा जी अभिज्ञ है, रस कैसे निष्पत्ति होगी इसके लिए राधा जी अभिज्ञ हैं, इसलिए अभिज्ञ होकर नाते वो मान कर लेती हैं, किस लिए, रस को नित्य नूतन बनाने के लिए मान कर लेती और कृष्ण को अपनी सेवा में नियुक्त कर देती हैं, नहीं तो रस बनता ही नहीं, इसलिए राधा जी अभिज्ञ हैं, उधर कृष्ण भी अभिज्ञ हैं, परम विदग्ध हैं रस विषय में, इसलिए वो राधा जी का मान दूर करने के लिए सब कुछ करते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा कभी भी किसी भी भगवत अवतार में उन्होंने नहीं किया, इसलिए किसी भी अवतार में ये सब रस नहीं हुआ, और अवतारों में अधिक से अधिक ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, माधुर्य की लीलाएं नहीं हुई, तो बहुत अल्प हुई, प्रकाश नहीं है, किंतु कृष्ण में ही ये लीलाएं, राधा कृष्ण के लीलाओं में नहीं, या रस पार्थम तक पहुंचा है। अभिज्ञ स्वराग, राधा जी भी अपने में पूर्ण है और कृष्ण भी अपने में परिपूर्ण है दोनों। तेने ब्रह्म हृदा, इन्होंने वही रस ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आदि कवि प्रकट हुए, क्योंकि ये कृष्ण के सुख हैं, राधा जी के सुख हैं और कृष्ण के हाथों में गए हैं और तब इनकी अनुभूति हुई है। हैं सुख किंतु उनके हृदय में इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर के प्रकाश किया उस रस ब्रह्म, तब ये जगत में उसको गुरु परंपरा की धारा से अब तक वो दे रहे। जत्र आद मुह्यंति जत सूर्य ब्रह्मा शंकर इत्यादि, वही अर्थ सब लोग इस रस में मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इनको, यहां तक कि ब्रह्मा भी ब्रज में आए किंतु इस रस तक नहीं पहुंच पाए, बस बाल्य लीला एक देखी और ऐश्वर्य देखा जो उन्होंने अभासुर को भी मुक्ति दे दी और इसी में वो आश्चर्यचकित होकर के बस इतने ही में रह गए। कृष्ण ने कुछ दिखलाना भी चाहा तो वो पहले चतुर्भुज रूप में दिखे और फिर इसके बाद में कृष्ण रूप में देखे। जितनी जितनी जगत के जितनी भी वृक्ष लता गुल्म सब कुछ को उन्होंने कृष्ण के रूप में दर्शन, यहाँ तक कि उनकी बंसी टंसी सब कुछ वो कृष्ण हो, बस कुछ उनके दिमाग में नहीं आया तो वो लकड़ी की भांति में गिर पड़े और वो वर्णन करने लगे। वो श्रीमद् भागवत के 14वें दशम के 14वें कुछ कुछ वर्णन किया। तो इस तरह से ब्रह्मा इत्यादि जिसमें मोहित हो जाते हैं, तेज बार मृदाम जत्र बिन्मय, इनके दोनों के मिलने से जो रस होता है उस रस में यही बतलाया जाए। पहले जमुना चंद्र
और चरण पहाड़ी
इत्यादि सब द्रवित हो जाते हैं, आज भी उनके चरण चिन्ह वहां पर देखे जा सकते हैं। जब तक त्रिस्वर्गो अमृषा, त्रिस्वर्गो राधा कृष्ण का त्रिस्वर्ग क्या,
उर्वराग नीलन
यही सब होगा कुछ, ये तीनों स्वर्ग जो है तीसर वो अमृत, अर्थात उनकी जो लीला है ऐसा हो दिया वृंदावन में पूर्ण लीला उनकी परिपूर्णतर, मथुरा में पूर्णतर, अर्थात सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि ये सब वहाँ की, और द्वारका में पूर्ण उनकी लीला, वहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में राधा जी और कृष्ण मिले। इस तरह से अपने धाम में सदा स्वयं सदा निरस्त होकर सत्यम परम धीमहि, उस राधा और कृष्ण को मैं ध्यान करता हूँ हमारे हृदय। और भक्ति वृत्ति के लिए क्या कहा, जिस कृष्ण से, कृष्ण की कृपा से ही केवल, अर्थात भक्ति जब तक नहीं रहेगी कृष्ण को नहीं हम लोग पा सकते, इसलिए जन्मादर्श जत भक्ति के द्वारा ही भक्ति का जन्म या प्रादुर्भाव होता है। पहले होता है साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति। अन्वय और इतर, अन्वय माने क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हुआ अनुकूल अनुशीलन, और प्रतिकूल जो कि त्याग करने लायक है अपराध अनर्थ इत्यादि सबको दूर करना, कुटीनाटी इत्यादि जीव हिंसा इत्यादि है ये सबको दूर करना, इसके द्वारा मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेग, गर्व और जो जो गोस्वामी ने और ये सब ने, इन सब को दूर किया जाए और भक्ति को ग्रहण किया जाए। अनुकूल अनुशीलन और प्रातिकूल्य वर्जन, अपराध इत्यादि और भाव, इसके द्वारा भक्ति स्वतंत्र है, चिन्मय वस्तु है। जब देखती है कि ये इसके हृदय में हमको उत्पन्न होना है तो भक्ति अनुग्रह करके उसके हृदय में उदित हो जाए। नामात्मा प्रवचने लभ्य, उसी तरह से भक्ति का भी है। और स्वराग किसी अन्न जोग तपस्या प्रति इत्यादि के द्वारा भक्ति प्रकटित नहीं होगी, ज्ञान से भी नहीं होगी, जोग से भी नहीं होगी। इसलिए बतलाया अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। ज्ञाने प्रयासम उदपाश्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ो। योग तपस्या प्रथम साध्याय सदाचार इत्यादि से वो भक्ति नहीं मिलती। भक्ति स्वतंत्र अवलंबनाना, भक्ति स्वतंत्र होती
है।
तेने ब्रह्म हृदय आद कब ए भूयंत जब सूर्य, वही भक्ति रे मैनन नयति, भक्ति दर्शयति भक्ति भूयसि, वही भगवान का दर्शन कराती है। इसलिए भक्ति आद कवे माने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुई और उनसे नारद, नारद से व्यास, इस तरह से वो भक्ति की परंपरा आज तक भी गुरु के परम धारा में आ रही, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग, ज्ञानी लोग और सब लोग मोहित हो जाते हैं। किसमें? प्रेम भक्ति के लिए। तेजो बार मृदाम जत्र विनिमयो, इसके लिए शायद देखना पड़ेगा जी क्या यथा विनिमय जब तीस और वो अमृषा। भक्ति के तीन ये जो भाव, साधन भाव और प्रेम, तीनों ही सत्य हैं। तीनों अवस्था में ही भक्ति निर्गुणा है, केवल साधना के और साधक के मन के तारतम्य से उसको ऐसा कहा जाता है, किंतु भक्ति एक ही है। वो अपने धाम में निरंतर रह करके और कृष्ण की सेवा करती है और जीवों को भी लेकर के वहीं पर उनको दर्शन करता है। ऐसी भक्ति के लिए हम सत्यम परम धीमही, हम उनका साथ बज गया आज। आज अभी हम लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में जाना है, इसलिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर किसका और दूसरा भाव और अर्थ जो है हम बताएंगे आज यहीं पर। मंशा कल कल अच्छा हम लोग भक्ति प्रेम राधा तत्व कृष्ण तत्व प्रेम तत्व विलास तत्व सब कुछ को प्रकाश कर, ऊपर से नहीं किसी को जानने दिया, उनको भी नहीं जानने दिया और प्रकाश कर। ऐसे ही ब्रह्मा जी को जैसे हुआ है हमारे हृदय में, आपने ये प्रकाश किया। मैं तो इन चीज़ों को जानता नहीं। अच्छा सचमुच में ये विशाखा सखी यदि थे तो ये जानते थे कि नहीं? जानते तो थे, किंतु योग माया के प्रभाव से कृष्ण अपनी भगवत्ता को, राधा अपने को राधिनी शक्ति और गोपियां अपने को वैसी, ये योग माया के प्रभाव से नहीं जानते। कृष्ण भी नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, इसी से उनकी लीला होती है, नित्य लीला नहीं होती। उसी तरह से विशाखा जी हैं राधामन, किंतु उस समय तक योग माया के प्रभाव से उनका यह भाव अच्छा भी था। महाप्रभु जी की कृपा से फिर योग माया वहां से थोड़ी सी हट गई और उनका भाव, यहाँ पर कह रहे हैं अब वो समझ गए उनके बोली से, चाली से, ढंग से और उनके प्रश्न पूछने के तरीके से वो समझ गए ये जो सामने जो सन्यासी हैं ये सन्यासी नहीं है, ये कोई ये कपट सन्यासी हैं, ये धूर्त हैं वो, और ये धूर्त और कोई नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं हैं, वो समझ गए। और चतुराई से ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, पूछने के ढंग से ही पता लग जाता है ये कौन व्यक्ति, तो वो समझ गए।
उन्होंने इसको संशय के रूप में प्रकाश किया। प्रभु हमारे हृदय में एक संशय आ गया, ठाकुर जी ने कहा जैसे क्या संशय आ गया, तो वो कहते हैं कि देखिए संशय आपके सामने प्रकाश कर रहा, आप कृपा करके उस संशय को आप पहले देख लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप एवे तुम्हार देखी हुई श्याम गोकुल। पहले जब मैं आया यहाँ आप मिले तो आपको एक ब्राह्मण सन्यासी तेजस्वी सन्यासी के रूप में आपको हमने देखा, किंतु इन प्रश्नों के बाद में अब मैं जो आपको देख रहा हूँ अब तो सन्यासी रूप मुझको आपके अंदर में दिखता नहीं महाप्रभु जी, किंतु उस समय में सन्यासी वेश में ही है, किंतु ये कारण अब मैं आपको सन्यासी के रूप में अब देख रहा हूँ श्याम गोप रूप। गोप रूप में जो श्याम अब उसी श्याम में मैं देख रहा हूँ, हाथों में बंसी है, सिर पर मोर मुकुट है, पीताम्बर की काछनी है, यहाँ पर पीताम्बर लहरा रहा है, होठों पर मुरली है, वो ऐसा सुंदर मैं रूप आपका देख रहा हूँ। कुमार सन्मुखे देखी कंचन पंचाली, उसे सामने कह रहे हैं किंतु आप कृष्ण ही हैं, कृष्ण के रूप में गोप के रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं अपने बीच में और आपके बीच में आपके ऊपर में एक कोई छाया है, वो छाया क्या है कंचन पंचाली का, पंचाली के माने पुतल, एक सोने की पंचालिका माने मूर्ति है, वो सोने की मूर्ति कौन है तार गौर कांति तुम्हार सर्व कांति धाता, वो इतनी सुंदरी है जिसका हद नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वे मदन मोहन है, इतने सुंदर है कोटि कोटि मदन कामदेव लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर, किंतु श्रीमती राधिका जी और सुंदर हैं, जो वो भी उन पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके सामने ही मैं देखता हूं एक गौ कांति से भरी एक सोने की पंचालिका मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत सुंदर, कहां से प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं प्रकट देख रहा हूं कि आप वंशी वदन कृष्ण ही हैं, श्याम हैं, और वो श्यामा नाम की किंतु है कैसी सोने की मूर्ति जैसे होती है, कैसे सोना जो पिघलाया गया हो अभी तुरंत थल थल एकदम पीला का भाव गौर वर्ण का भाव, उसे आपकी सारी कांति समस्त सारे अंग पैरों से पैर वस्तक्षल से वस्तक्षल शीर से मुखारविंद से मुखारविंद हाथों से हाथ समस्त अंग ही उसके जो किशोरी है श्यामा जी हैं गौरी, उस गौरी के अंगों से और उसकी कांति से आप ताहते प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं देख रहा हूं राय रामानंद कह रहे हैं उस सुंदर गौ कांति वाली राधिका के पीछे सोने की जो मूर्ति है उसके पीछे वंशी वदन है, नव किशोर नटवर वंशी धारी बहुत ही सुंदर, नाना भावे चंचलता है कमल नयन, और आप जो श्याम सुंदर हैं आपके नयन कैसे हैं चंचल कमल के समान नयन है, नयनों में कमल जैसी समस्त माधुरी माया है उनमें,
और चंचल है मानो, इसलिए चंचल। जैसे हिरणी का बच्चा, छोटा सा हिरणी, चंचल नेत्रों से इधर उधर देखती है, भय से भीत होकर। तो यहाँ पर मानो किसी को खोज रहे हैं, इसलिए चंचल है, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। यही मत नंद कुमार देखी है चमत्कार। अकपट कह प्रभु कारण निहार, मैं ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। क्यों नहीं? कृष्ण लीला में उन्होंने कृष्ण को देखा है और राधा जी को भी देखा है, किंतु ऐसा रूप नहीं कभी देखा जो दोनों मिलकर के एक हो गए हों और श्याम कांति ढक गई हो गौर कांति के द्वारा। कोई चीज किसी चीज से ढकती है कब? कब ढकेगी? जिसका प्रभाव अधिक होगा वो दूसरे को ढक लेगा। और शक्ति ही शक्तिमान को प्रकाशित करती है। राधा जी कृष्ण के स्वरूप को और जो कुछ उनकी भगवत्ता है राधा जी ही कारण है। इसलिए राधा जी की कांति से उनकी कांति श्याम कांति ढक करके एक ऐसे अपूर्व दोनों का मिलन, उधर नीलमणि नील जैसी आभा, इधर स्वर्ण कांति, दोनों मिलकर के एक तीसरी कोई अद्भुत कांति बन गई। इसी का नाम है रसराज महाभाव। मैंने पूछा जी से ये कैसे हुआ बतलाइए तो, मैंने तो आपको श्याम के रूप में भी देखा है और आपकी श्यामा जी को भी देखा, किंतु ये अद्भुत ये दोनों का मिश्रण ये कैसे ये हुआ, बतलाइए आप कौन हैं? प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ो प्रेम है, तुम्हार स्वभाव यही ज्ञानी हो निश्चय, प्रेमेर प्रभाव यही ज्ञानी हो निश्चय। महाप्रभु ने हंस दिया, ये तो हमारे भाव को समझ लिया कि मैं कौन हूं, मैं वही श्याम हूं, राधा जी के भाव और कांति को लेकर के आया, ये समझ गया। इसलिए थोड़ी सी उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये चोरी की कलई खुल गई, इसलिए वो थोड़ा सा हंस दिए और कह रहे हैं मैं तो जो हूं तुम देख रहे हो, जो मैं ब्राह्मण सन्यासी हूं, ब्राह्मण सन्यासी हूं मैं तो वही हूं, किंतु तुम्हारा कृष्ण के प्रति अगाध निष्ठा है, इसलिए तुम सर्वत्र जिधर ही देख रहे हो उधर श्याम 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 देख रहे हो। मैं बदला नहीं, हमारे अंदर में भी और जहां जहां तुम्हारा नेत्र पड़ा सबको तुम श्याम मई देख रहा है। केवल प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। महाभागवत देखे थावर जंगम, जहां तहां तार श्री कृष्ण को पुष्पुरा है, थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है, तार इष्ट देव इसको। साधारण रूप में एक ऐसी कहावत है कि चोर सबको चोर ही देखता है, काम का पसंति काम मायम जगह, चोर सबको चोर ही देखेगा, जितने देखेगा सभी चोर रहते हैं। और जो कामी पुरुष है वो सर्वत्र नारीमय कामनी मैम, ये ऐसा जो जैसा है जाति रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखा तो वैसा ही देख लिया। तो इसमें जिसको जो देख रहा है उसकी ये ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रेम जिसके प्रति हो जाता है, जिसके प्रति भावना रहती है वैसा ही आदमी देखता है। जैसे रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण के प्रेम में रो रही थी, तो रात में उन्होंने देखा कि कुररी नाम का एक पक्षी भी विलाप कर रही है, तो वो कुररी से पूछती हैं, अरे प्यारे सखी, जैसे हमारे पति का वियोग हो गया तो तुम्हारे पति का जरूर वियोग होगा, हो गया नहीं तो तुम रोती नहीं, तुम इतनी जब रो रही है तो जरूर तुम्हारा पति का वियोग होगा, जैसे हमारा अपनी जैसी देखो। ठीक ऐसे ही भगवान का भजन करते 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 निष्ठा से रुचि आसक्ति भावावस्था अंत में प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर ऐसा ही उत्तम महाभागवत प्रहलाद महाराज जी से आरंभ करके और उसके ऊपर वाले जितने भी वो ऐसा ही देखते कौन है तो ऐसा ही हो जाता है। कृष्ण प्रेम का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दर्शन हो। और यदि कोई राधा पक्ष कोई गोपी का भाव लेकर के भजन करता है तो वो कैसा देखेगा, सब राधा मय कृष्ण को सर्वत्र, जैसे ब्रह्मा ने सर्वत्र ही कृष्ण कृष्ण देखा, कागभूषुंडी जी ने राम मैं सब जगत को देखा, सर्वत्र राम ही राम देखा, या पार्वती जी जी की कथा जो मैं कहता हूं वो ऐसे ही एकदम राम 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 सर्वत्र देखी। तो ये महाभागवत लोग भजन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वो निष्ठा निश्चलता आ जाती है, स्थिरता। इसके बाद में भजन करते 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 उसमें रुचि हो जाएगी, रुचि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसक्ति होगी, यही आसक्ति पहले भजन में भजन के प्रति और फिर
भजन
तब फिर भगवान की बड़ी इस पर दया हो जाती है, तब उस जगत से वो भाव उनके परिकरों में से इनके यहाँ स्फूर्ति हो जाता, वह भाव इस जगत का कोई मन की कोई कल्पना नहीं है, जो मन की कल्पना से ऐसा हो जाएगा। अभी हम रोते हैं हंसते हैं मन की स्थिति के अनुसार, कोई मर गया तो रोते हैं, कोई बच्चा जन्म ले लिया तो खूब हंसते हैं, हंसने की बात होती है, हंसते हैं रोने की बात होती है, अपने मन की ये सब भावना है। किंतु वह जो प्रेम है वो जगत की चीज नहीं है, भगवान के परिकरों में से यहाँ पर आदित होता है, तो वो यथार्थ भाव है। वह भाव उत्पन्न होने पर सर्वत्र ही अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखेगा। प्रहलाद महाराज जी से पूछा कंस ने, अरे तू डरता नहीं है, तुमको आग में जलाया, तुमको विष खिलाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में मैंने फेंकवा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे दबाया, ऐसा कोई उपाय नहीं, सांपों से कटवाया, विष दे दिया, तू मर नहीं रहा, तू तो देखते कि अद्भुत व्यक्ति, तो तुमको इतना निर्भय तुम कैसे हो गया, तुम्हारा बल कहाँ है? तो उन्होंने कहा जो सबका बल है, जो सबका सहारा है, वह भी मेरा सहारा है, मैं उसी के बल से सर्वत्र निर्भय हूं, किसके, भगवान के बल से, और वो सब में है अंतर्जामी के रूप में, कोई अनुभव करता है कोई करता है, मैं तो उस प्रभु को सर्वत्र ही देखता हूं, समस्त जीवों में उस प्रभु को देखता हूं, और उस प्रभु में समस्त जीवों को दर्शन करता हूं। अभी ये श्लोक आएगा, सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवद्भावम् आत्मना भूतानि भगवतात्मनेश भागवत। भजन करते करते भगवान की उपलब्धि, ये झूठ मूठ का कि कोई कल्पना नहीं है, जो भगवान है भजन करने से ऐसा होता है। पहली स्थिति में संदेह लोगों को रहता है, अच्छा भगवान का भजन करते हैं तो हमारा अमुक व्यक्ति क्यों मर गया, लोग ताना देंगे ये इतना भजन करने वाला या करने वाली और उसका यह प्यारा व्यक्ति चला गया, ये कैसे हुआ, क्यों, वो सब सुझा देगा, ये सब साधुता इत्यादि जितने सब ढकोस ले, ये एक पेट पालन करने का पैसा रोजगार करने का एक अंदा है, दूध मुख को संतना दी, तो अच्छा वो क्यों मर गए, वो क्यों मर गए, महात्मा जी जो सबको सांत्वना दे रहे थे जो भगवान, तो वो क्यों मर गए, अरे वो तो समझते नहीं है ये कपड़ा है, बुद्धिमत्ता यही है कि पुराना फटा होने पर उसको बदल दिया जाए, उनके समझ में ये कभी नहीं आता। तो भगवत भक्त जो होता है, साधन करते 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 जब महाभागवत चला जाएगा, पहले कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, तो फिर वो निर्भय हो जाता है। मध्यम अधिकार से ही निर्भय होने लगता है, तब ये सांसारिक विपत्तियों के लिए और परिवर्तनों के लिए उसको कम फिकर चिंता कुछ भी नहीं है, एकदम स्थिर हो। जैसे भीष्म पितामह जी, व्यास जी, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, बहुत तरह से लोग समझा रहे हैं, व्यास जी भी आए उनको समझाए, और भीष्म पितामह जी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और धृतराष्ट्र को भी बहुत समझाया, उनके तो नाती पर नाती अपने हैं ये लोग, पांडवों की समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो समझेंगे, बहुत समझाया किंतु उन्होंने माना नहीं। जिस समय माना नहीं, और ये हमारे भीष्म पितामह जी अस्त्र लेकर के खड़े हो जाते, देखो ये तुम लोग क्या करता है, पांडवों को देना पड़ेगा, ये मेरा राज्य है, तो क्या होता
के बाद
वो सबको ना को चने चबवा करके और उसी समय में सब कुछ उनको दे दे, कुछ लोग नहीं कर सकते थे, किंतु उन्होंने जानबूझ करके भी कुछ नहीं किया, बल्कि दुर्योधन की तरफ से ही लड़ा। ये महाभागवत व्यास जी अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं, जब उनको तीन पुत्र भी दे दिए, विदुर, धृतराष्ट्र,
पांडु,
और पांडु, तीन पुत्र भी तो अपनी दृष्टि से ही उनको दे दिया, उनको तो पुत्र था नहीं विचित्रवीर्य को, किंतु दे दिया, तो जो जन्म देने में संभव समर्थ है, इच्छा कर देते ना, अभी संपा दे जाओ, अभी तुम मर जाओ, सब दुर्योधन इत्यादि सब मर जाते, युद्ध इत्यादि सब अपने आप बंद हो जाता, सब काम हो जाता, किंतु अपनी योग विद्या का, अपनी शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया। ये लोग जानते हैं जैसा कृष्ण भी स्वयं भगवान होकर के भी कुछ क्यों नहीं किया, इसमें जगत का कल्याण था, वो समझते हैं कि कैसे कल्याण होगा, इसलिए महाभागवत एकदम स्थिर रहता है, भगवान के प्रति विधान में संतुष्ट रहता है। सुनते हैं एक कोई संत थे, नौका से जा रहे थे, शाम का समय था, आकाश में बादल घिर गए, धीरे धीरे एकदम अंधकार सा हो गया, थोड़े थोड़े बूंदी बांदी भी आरंभ हो गई, अब बड़ी जोर से आंधी चली, नौका तो पहले छूट गई थी, नौ नदी चौड़ी थी, बीचों बीच में गई और साथ ही साथ में बड़ी जोर से अंधड़ आया, नाव डगमगाने लगी, कभी इधर कभी इधर, और नाव में आदमी भरे थे, उसमें महात्मा जी भी बैठे हैं, नाव इधर से पानी में इधर से पानी लेती है, अब फिर इधर करवट बन जाती है, अब गए सबके प्राण सूखे, अब गई नाव। महात्मा जी जब देखा जे नाव डूब रही है, तो उन्होंने कमंडल उसे जर भल करके और उस नौका में फरना दिया, लोगों ने कहा जी क्या ये साधु है ना, ये क्या है, नौका एक तो अपने आप डूब रही है और नौका में पानी भर करके दोबारा आए, बड़े लोग सब बिगड़ रहे हैं, किंतु वो अपने सुध में है, वो किसी की तरफ देख नहीं रहे, वो पानी भरते ही चले जा रहे, भगवान की कृपा से नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इतने में आकाश छट गए, बादल छट गए, वर्षा भी थोड़ी सी कम, नौका भी अब किनारे पर लगने वाली, नौका भी अब सीधी हो गई, अब महात्मा जी ने पानी उलीचना आरम्भ किया, नौ मंच लेकर के बाहर बचना आरम्भ किया, लोगों ने कहा जी ये पागल है और कुछ नहीं, अरे अब पानी फेंकने की क्या जरूरत है, नौका तब लग गई, अब तो डूबेगी नहीं। अंत में महाराज जी से कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति ने पूछा जी आप नदी में पानी भरने लगे नौका में, अब फिर उसको खाली कर, ऐसा क्यों, अरे भाई प्रभु की इच्छा थी या नौका डूब जाए, तो मैंने सोचा जी भगवान की इच्छा के लिए हम भी उसका उसकी सहायता कर दे, प्रभु की प्रसन्नता ही सब कुछ है जी, इसलिए जब नौका डूब रहे तो मैंने सोचा जी और भी मैं सहायता करके डूबा डूब जाए,
और जब देखा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, बादल छट गए, हवा भी बंद हो गई और नौका भी निकट आ रही है, तो देखा कि प्रभु की इच्छा है जो नौका लग जाए, इसलिए मैं पानी भर करके प्रभु की इच्छा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्रभु का गुलाम, उनका काम उसके संसार में काम। ऐसे महापुरुषों को संसार के किसी भी विपत्ति से उद्विग्न नहीं हो सकता। ऐसा ही भजन करने वाला निरुद्योग होकर के वो बतलाया ना, भाव का लक्षण ही नहीं बतलाया, शांति अपर्थ काल। शांति माने क्या? समस्त विश्व की विपदाओं के आने पर भी वो एक
निशुद्ध नहीं है,
क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर में, वो जो इच्छा करेगा वो होगी और वो हो करके रहेगी, तो क्यों नहीं उसमें प्रसन्न रहा जाए। इसलिए संत लोग भी ऐसे ही, वो सर्वत्र अपने इष्ट देव को देख, प्रहलाद महाराज जी क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवत भावम आत्मनः। आत्मनः माने अपना, भगवान के प्रति जो भाव देखते हैं, वो देखते हैं कि संसार के सब लोगों में वही भाव है। जैसे नृसिंह देव की आराधना प्रहलाद महाराज का, वो देखेंगे ये सब लोग नृसिंह देव की उपासना करते हैं, नृसिंह मूर्ति को सर्वत्र देखते हैं। हनुमान क्या देखेंगे, वो देखेंगे सारे विश्व के लोग राम की उपासना करते हैं, सर्वत्र वो राममय ही, सिया राममय, वो इस रूप में देखेंगे। उनकी वो देखने से इष्ट देव की स्तुति होती है। अरे और तो क्या, निर्जीव वस्तु एक मयूर का पंख है उसको, और की तो बात क्या, हम ही लोग जब देखते हैं, यदि मिट्टी में पड़ा हुआ है कहीं नारी और मोरी के पास भी, हम जब भी देख लिया तो क्या करते हैं, झट उठा लेकर के झाड़ झूठ कर सिर पर रख लेते हैं। एक तुलसी का पत्ता सूखा हो या कच्चा हो, कहीं भी पड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, झट उठा करके सिर पर रख लेते हैं। क्यों, कृष्ण लीला की स्फूर्ति होती, कृष्ण की स्फूर्ति। इसलिए महाभागवतों को संसार